बहुत पवित्र दिन है। दो उत्सव हैं, एक तो श्री पाद मध्वाचार्य का आविर्भाव और दूसरा भगवान श्री रामचंद्र विजयोत्सव। तो श्री पाद मध्वाचार्य का जो जीवन चरित्र है ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ समाधि पुस्तक से। इनका आविर्भाव हुआ था 1238 में उडुपी के निकट कर्नाटक दक्षिण भारत में, और इनको वायु देवता का अवतार माना जाता है और इनके शरीर में असीमित असाधारण बल था और असाधारण बुद्धि थी। तो एक बार एक बंगाली बाघ ने आक्रमण किया मध्वाचार्य के सन्यासी शिष्य सत्य तीर्थ के ऊपर, तो मध्वाचार्य ने उस बाघ के साथ कुश्ती लड़ी। देखा कितना साहस, साथ कुश्ती लड़ी और उसको भगाया। जब मध्वाचार्य के बल से जब वो हार गया तो अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच में दबा करके चला गया। मध्वाचार्य ने दीक्षा ली थी 5 वर्ष की अवस्था में और संन्यास लिया 12 वर्ष की अवस्था में और घर त्याग दिया। तो इनका जन्म हुआ था एक विशेष कार्य के लिए, वो क्या है, शंकराचार्य का जो मायावाद सिद्धांत है उसको खंडन करना। तो शुद्ध जो व्याख्या है वेदांत सूत्र की उसको उन्होंने लिखा, और फिर जो शुद्ध भगवान की भक्ति है उसका प्रचार किया। इन्होंने अपने सिद्धांत को नाम दिया द्वैतवाद। शंकराचार्य के विरुद्ध, शंकराचार्य ने दिया था अद्वैतवाद, तो उसके बिल्कुल विरुद्ध है द्वैतवाद। शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैतवाद, मतलब जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, अद्वैत दो नहीं है। मध्वाचार्य ने बिल्कुल उल्टा दिया, क्या द्वैतवाद, ईश्वर और जीव में भेद है, अलग अलग है। शंकराचार्य के बाद जिसने भारत में व्यापक भ्रमण किया हो, शंकराचार्य ने जैसे भ्रमण किया था निर्विशेषवाद अद्वैतवाद फैलाने के लिए, तो मध्वाचार्य ने भी जो ना भ्रमण किया भारत की पूरी लंबाई और चौड़ाई में, और जो है भगवान विष्णु की जो भक्ति का सिद्धांत है उसको उन्होंने फैलाया। तो इन्होंने असंख्य जैनियों को, बौद्धों को, मायावादियों को, नास्तिकों को, तर्कवादियों को हराया। फिर आशा करके कि शिला व्यास देव से मिलन हो सके, ये मध्वाचार्य हिमालय में स्वयं ही गए थे, तो व्यासदेव ने इनको सालग्राम शिला दी जिसे अष्टमूर्ति कहते हैं, और इनकी जो भगवद गीता की व्याख्या थी उसको उन्होंने अनुमोदन किया व्यास जी ने, और मध्वाचार्य को आशीर्वाद दिया कि इनको शास्त्रों का और ज्यादा गहरा जो है अनुभव प्राप्त हो जाए। उडुपी में मध्वाचार्य ने बहुत सुंदर गोपाल भगवान का जो विग्रह है उसको स्थापित किया है, जिसमें कि भगवान गोपाल जी जो है एक जो छड़ी है ना उसको लिए हुए खड़े हैं। तो ये जो विग्रह है एक गोपी चंदन का जो बड़ा टुकड़ा था उसमें निकला था, और इन्होंने 8 मठों की स्थापना की है ताकि उडुपी कृष्ण की जो है ना बड़े प्रेम पूर्वक सेवा हो सके। जो सन्यासी लोग हैं प्रत्येक मठ के, तो वे कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं बहुत ही शुद्धता और जो है नियमों का पालन करते हुए, और हर एकादशी को ये लोग निर्जल एकादशी पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो निकला है ये मध्वाचार्य से निकला है। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने पूरी तरह से मध्वाचार्य का जो साहित्य है उसका अध्ययन किया है, तब उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। तो 60 संदर्भों के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने मध्वाचार्य के साहित्य से बहुत कुछ जो है ना बातें निकाली हैं। जीव गोस्वामी ने देखा है कि गौड़ी सिद्धांत जो है, अचिंद भेदावी तत्व जो है, ये मध्वाचार्य के भागवत पर्याय से ही निकला है। श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं उडुपी में गए और मध्वाचार्य का जो वहाँ मठ है वहाँ पर गए थे और भगवान ने इस संप्रदाय में हरिनाम संकीर्तन की जो विधि है वो विशेष रूप से जोड़ी। तो जो मध्वाचार्य के अनुयायी और गौड़ीय वैष्णव हैं, तो मैं सिद्धांत की बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं और दोनों ही स्वीकार करते हैं कि जरूरी है कि गुरु के जो है चरण कमलों का आश्रय लिया जाए। सूत्र भाष्य में जो है मध्वाचार्य बृहत तंत्र और महासंहिता का उदाहरण देते हैं ये बताने के लिए कि कोई जो शिष्य है तो अपने गलत गुरु को त्याग करके वो किसी विशेष जो योग्य आत्मज्ञानी गुरु हैं उनकी शरण लिए। प्रमेय रत्नावली में शिलबद्ध विद्याभूषण ने जो 9 सिद्धांत हैं उनको बताया है जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय और मध्य संप्रदाय में मिलते जुलते हैं। वैष्णव सिद्धांत माला में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सभी गौड़ी वैष्णवों को कि बड़ी सावधानी से 9 शिक्षाएं हैं सत्य की जो मध्वाचार्य ने दी हैं हमारे गुरु परंपरा में, उनका कठोरता से पालन करें। तो 9 शिक्षाएं क्या है मध्वाचार्य की? पहला तो है भगवान श्री कृष्ण एकमात्र परम सत्य हैं और कोई नहीं है उनके सिवा, पहली शिक्षा। दूसरी है कि ज्ञान के जो स्रोत हैं वो कौन है? वेद। वेदों का जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण को जानने के ही लिए है। फिर तीसरी बात है कि ये जो जगत है ये सत्य है, मिथ्या नहीं है। मायावादी कहते हैं जगत मिथ्या। चौथी बात है कि ईश्वर में, जीव में और पदार्थ में जो अंतर है वो वास्तविक अंतर है, सत्य में अंतर है। पांचवा है जो जीवात्माएं स्वभाव से ही भगवान श्री हरि की सेवक हैं, सब जीवात्माएं। छठवां है 2 प्रकार के जीव हैं, एक तो नित्य मुक्त और दूसरे नित्य बद्ध। सातवां सिद्धांत कि जो मोक्ष है इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति। दूसरे शब्दों में प्रवेश करना भगवान की नित्य प्रेममयी सेवा में।
आठवां
सिद्धांत है जो कृष्ण का शुद्ध भक्ति योग है तो वो ही एकमात्र उपाय है
इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए।
नवा सिद्धांत है कि जो सत्य है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से जाना जा सकता है। तो श्रीमध्वाचार्य भगवान राधा गोविंद की जो नित्य वृंदावन की मधुर लीलाएं हैं उनमें माधवी गोपी के रूप में सेवा करते हैं। श्रील मध्वाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो अब हम भगवान रामचंद्र का जो विजयोत्सव है उसको पढ़ेंगे। तो ये वाल्मीकि रामायण है, युद्ध कांड है, तो बहुत विस्तार से युद्ध का वर्णन है इसमें। तो भगवान श्री राम का जो रावण से युद्ध होता है, तो जिस समय युद्ध हो रहा था राम और रावण के बीच में, तो एक अंतर था। अंतर क्या था कि श्री रघुनाथ जी भूमि पर खड़े हैं और वो राक्षस रथ पर बैठा हुआ है। ऐसी दशा में इन दोनों को युद्ध है, बराबर नहीं है। वहां आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और किन्नर इस तरह की बातें करने लगे कि भाई मजा नहीं आ रहा इसमें, युद्ध तो देखने वाले आए हैं है ना, लेकिन ये ठीक युद्ध नहीं है, क्योंकि भगवान राम तो जमीन में खड़े हैं और राक्षस राज रावण जो है रथ में बैठा हुआ है, तो ठीक नहीं, दोनों को रथ होना चाहिए, दोनों को रथ मिलना चाहिए। भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च राक्षसः तत्समं युद्धमित्याहुर् देवगन्धर्वे किन्नरम्। तो देवराज इंद्र ने इन लोगों की बात सुनी तो अपने सारथी मातुली मातली को बुला करके कहा, इंद्र ने कहा ततो देवे वरहा श्रीमान श्रुत्वा तेसाम वचो मृतम आहुए मातलिम सक्रोम वचनम चेदम अम्रवीन। अब इंद्र मातली से क्या कहते हैं, सारथे रहकुल तिलक श्री रामचंद्र जी भूमि पर खड़े हैं, मेरा रथ लेकर तुम शीघ्र उनके पास जाओ, भूतल पर पहुंचकर श्री राम को पुकार कर कहो ये रथ देवराज ने आपकी सेवा में भेजा है, इस तरह उन्हें रथ पर बिठाकर तुम देवताओं के महान हित का कार्य सिद्ध करो। रथेन ममे भूमिष्ठम शीघ्रम याहि रघुत्तमम आहुए भूतलम यातः कुरुदेव हितम महन। देवराज किस प्रकार कहने पर देव सारथी मातली ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और ये बात कही। इत्युक्तो देवराजेन मातलिर देव सारथी प्रणम्य शिरसा देवम ततो वचनम अम्ब्रवीन। अब सारथी मातली क्या कहता है, देवेंद्र मैं शीघ्र ही आपके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर उसे साथ लिए जाऊंगा और श्री रघुनाथ जी के सारथी का कार्य भी करूंगा। शीघ्रम यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यम च करोम्यहम् ततो हयश्च संयोज्यं हरितः चन्दनोत्तमम्। अब इंद्र का जो रथ है सोचिए कि कैसा विशेष वो रथ होगा, सब कुछ सोने का बना हुआ है, विचित्र शोभा है उसकी, सैकड़ों घुंघरुओं से विभूषित किया गया है और सवेरे के सूर्य की भांति लाल रंग का रथ है और उसके कुबर में नीलम जड़ी गई है जिसमें सूर्य के समान तेजस्वी हरे रंग वाले अच्छे घोड़े जुते हुए हैं और उन घोड़ों को श्वेत चमर आदि से अलंकृत किया गया है। उस रथ में आरूढ़ होकर मातली देवराज का संदेश लेकर स्वर्ग से भूतल पर उतरकर श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा हुआ। तथा कांचन चित्रांगहम किंकने सतभूषिताम तरुणादित्य संकाशुम वैदूर्य मय कुबरहम सदस्व कांचना पीडैर युक्ता श्वेत प्रकीर्णक हरि भी सूर्य संकाशैर हेम जाले विभूषित रुक्म वेणुं ध्वजा श्रीमान देवराज रथोवरहम देवराजेन संदिष्टुम रथमारुह्य मातलीम अभ्यवर्तत काकुत्स्थम अवितीर्य त्रिविष्टपान। तो मातली जो है भगवान रामचंद्र से बोलता है, क्या बोला, महाबली शत्रुसुदन श्रीमान रघुवीर सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र ने विजय के लिए आपको ये रथ समर्पित किया है। सहस्राक्षेण काकुत्सं रथोयम विजयायते दत्तस्तव महासत्वं श्रीमन शत्रु निबर्हणे। ये इंद्र का विशाल धनुष है, ये अग्नि के समान तेजस्वी कवच है, ये सूर्य के समान प्रकाशमान बाण है और ये कल्याणमयी निर्मल शक्ति है, उसी रथ में सब समान है। यदमेन्द्रम महचापम कवचम चाग्ने सन्निभम सराश्चादित्य संकाशम शक्तिश्चा विमला शिवम। वीरवर महाराज आप इस रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी की सहायता से राक्षसराज रावण का उसी तरह वध कीजिए जैसे इंद्र दानवों का संहार करते हैं। आरोह्य मुम रथम वीर राक्षसम जय रावणम मया सारथिना देव महेंद्र एव दानवम। तो मातली के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा की। देखा भगवान राम का कितना शिष्टाचार है, मनुष्य को जो है देवताओं का सम्मान करना चाहिए। तो भगवान राम मनुष्य का जो है ना चरित्र दिखला रहे हैं। तो उस रथ की परिक्रमा करके उसे प्रणाम करके फिर उस पर सवार हुए। उस समय अपनी शोभा से वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने लगे। इत्युक्तां सम परिक्रम रथम तम अभिवाद्य आरुरो है तदा रामं लोकान् लक्ष्म्या विराजयन्। अब राम और रावण का द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ। द्वैरथ मतलब हाँ दो रथ है, एक एक रथ में दोनों बैठे हुए हैं। बड़ा अद्भुत रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध हुआ। रामचंद्र जी उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता थे, उन्होंने राक्षस राज के चलाए हुए गांधर्व अस्त्र को गांधर्व अस्त्र से नष्ट किया, देव अस्त्र को देव अस्त्र से नष्ट किया। तब रावण ने अत्यंत कुपित हो परम भयानक राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। राक्षसास्त्र अब उस राक्षसास्त्र से क्या हुआ कि रावण के धनुष से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण महाविशैले सर्प होकर रामचंद्र जी के निकट पहुंचने लगे। कैसा राक्षसास्त्र है। उन सर्पों के मुख आग के समान प्रज्वलित होते थे। वे अपने मुखों से जलती आग उगल रहे थे। सांप वे सब के सब श्री राम के ही सामने आने लगे। ते दीप्ते वदना दीप्तम वमन्तो ज्वलनम मुखे राम एवाभ्यवर्तन्ते व्याधिताश्या भयानकम्। अब ये सर्प कितने भयानक हैं कि वासुकी नाग के समान असह्य है। उनका स्पर्श था, उनके फन प्रज्वलित हो रहे थे, वे महान विष से भरे थे। उन सर्पों से व्याप्त होकर संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। सोचो कितना भयानक युद्ध है। युद्धस्थल में उन सर्पों को आते देख भगवान श्री राम ने क्या किया, गारुडास्त्र का प्रयोग किया। तान दृष्ट्वा अपन गान रामा समापतत आहवे अस्त्रम गारुत्मतम घोरम प्रादुश्चक्रे भयावहम्। फिर क्या हुआ, राम के धनुष से छोटे हुए सुनहरे पंख वाले अग्नि के समान तेजस्वी बाण सर्पों के शत्रुभूत सुवर्ण में गरुड़ बनकर सब ओर बिचरने लगे। बहुत से गरुड़ बन गए, एक एक बाण जो है ना गरुड़ बन गया और उनको खाने लगे, उन सर्पों को खाना शुरू कर दिया। ते राघव धनुर्मुक्ता रुक्म पुंखा सखी प्रभा सुपर्णा कांचना भूत्वा विचेरु सर्प शत्रुवहम्। अब क्या हुआ कि उन गरुड़ाकार बाणों ने रावण के महान वेगशाली उन समस्त सर्पाकार सहायकों का संहार कर दिया, खत्म। राक्षसास्त्र और गारुड़ास्त्र। अब राक्षसराज रावण क्रोध से जल उठा। उस समय श्री रघुनाथ जी पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगा। तब श्री राम को हजारों बाणों से पीड़ित करके उसने मातली को भी अपने बाणों से घायल कर दिया। तब रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा को लक्ष्य करके एक बाण मारा और उससे उस ध्वज को काट डाला। उस कटे हुए सुवर्ण में ध्वज को रथ के ऊपर से उसके निचले भाग में गिराकर रावण ने अपने बाणों के जाल से इंद्र के घोड़ों को भी छत विक्षत कर दिया। ये तो बहुत जो है ना उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये देखकर के देवता गंधर्व चारण और दानव विषाद में डूब गए। ऐसा लगता है श्री राम की हार होने वाली है। श्री राम को पीड़ित देख सिद्धों और महर्षियों के मन में भी बड़ी व्यथा हुई। विभीषण सहित सारे वानर युद्धपति भी बहुत दुखी हो गए। भगवान राम ऐसी लीला करते हैं। तब तब क्या हुआ, अब भगवान ने क्रोध का भाव प्रकट किया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं राम की, नेत्र कुछ कुछ लाल हो गए, उन्हें ऐसा महान क्रोध हुआ जैसे जान पड़ता था कि वे समस्त राक्षसों को भस्म कर डालेंगे। सकृत्वा भ्रुकुटिम क्रोधा किंचन संरक्त लोचन जगाम सु महाक्रोधम निर्दहन राक्षसान। उस समय कुपित हुए बुद्धिमान से राम के मुख की ओर देखकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे और पृथ्वी कांपने लगी। तस्य क्रोधस्य वदनम् दृष्ट्वा रामस्य धीमता सर्वभूतानि वित्रेषु प्राकम्पते च मेदिनी। वहां खड़े हुए असुर रावण को संबोधित करते हुए बोले, रावण तुम्हारी जय हो। एक रावण के पक्ष के हैं, कुछ दर्शक लोग हैं, अब तो केवल देख रहे हैं ना, तो रावण के पक्ष के हैं तो बोले, रावण तुम्हारी जय हो। उधर देवता श्री राम को पुकार कर बारम्बार कहने लगे, रघुनंदन आपकी जय हो, जय हो। दशग्रीवम जयेत्याहु असुरा समवस्थिता देवा रामम अथो चुस्थे त्वं जयेति पुनः पुनः। इस समय दुष्टात्मा रावण ने क्रोध में आकर श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने की इच्छा से एक बहुत बड़ा हथियार उठाया। एतस्मिन्नन्तरे क्रोधान् राघवस्य च रावणः प्रहर्तु कामो दुष्टात्मां स्पृशन् प्रहरणम् महान्। वह जो हथियार था ना, कैसा था, वज्र के समान शक्तिशाली और सब शत्रुओं का संहार करने वाला। उसके अग्रभाग बहुत तीखे थे, प्रलय काल की अग्नि राशि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसका नाम था शूल, रावण का जो शूल था बड़ा भयानक था। रावण ने उस शूल को हाथ में लिया। अब रावण क्या बोलता है राम से, उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महापराक्रमी रावण ने बड़े जोर से गर्जना करके श्री राम से कठोर वाणी में कहा। राम और रावण की कोई बात हुई नहीं अभी तक, अभी रावण बात कर रहा है कठोर वाणी में, है ना। सगृहीत्वा महावीर्यं शूलं तं रावणो महन् विनद्य सुमहानादं रामं परुषं अब्रवीन्। क्या कहता है, राम ये शूल वज्र के समान शक्तिशाली है, जैसे मैंने रोष पूर्वक अपने हाथ में लिया है, ये भाई सहित तुम्हारे प्राणों को तत्काल हर लेगा। रावण राम से बोल रहा है, शूलोयम वज्र सारस्ति राम रोषान मयोद्यताम तब भ्रातृ सहायस्यम संध्या प्राणान हरिष्यति। युद्ध की इच्छा रखने वाले राघव, आज तुम्हारा वध करके सेना के मुहाने पर जो शूरवीर राक्षस मारे गए हैं उन्हीं के समान अवस्था में तुम्हें भी मैं पहुंचा दूंगा। तुमने रावण को राक्षसों को मारा है, उसी अवस्था में अब तुमको पहुंचा दूंगा, रावण कह रहा है। रघुकुल के राजकुमार ठहरो, अभी इस शूल के द्वारा तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। उसको बहुत विश्वास है कि अब राम को वो मार डालेगा। ऐसा कहकर राक्षसराज रावण ने श्री रघुनाथ जी के ऊपर उस शूल को चला दिया। तिष्ठे दानीम निहन्मित्वाम एतशूलेन राघव एव मुक्त्वा सचिक्षेपं तच्छूलं राक्षसाधिपाम। और वो शूल भी बहुत भयानक था। परम पराक्रमी श्री रघुकुल नंदन राम ने उस भयंकर शूल को अपनी ओर आते देखकर धनुष तान कर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भगवान राम बाण चलाने लगे उस शूल के ऊपर। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आग पतंगों को जला दे, उसी प्रकार रावण के उस महान शूल ने रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को जलाकर भस्म कर दिया। वो सूल बहुत शक्तिशाली था, राम के जितने बाण हैं वो सब जल गए। तब जब रघुनाथ जी ने देखा कि मेरे सहायक अंतरिक्ष में उस सूल का स्पर्श होते ही चूर चूर हो राख के ढेर बन गए हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। देखो राम की तत्क्षण बुद्धि कितनी तीव्र है। अभी सूल जो आ रहा है तो बाण काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम जो ना अभी कुछ और करेंगे। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रघुवीर ने मातली की लाई हुई देवेंद्र द्वारा सम्मानित शक्ति को हाथ में ले लिया। इंद्र की जो शक्ति वो हाथ में ले ली उन्होंने। बलवान से राम के द्वारा उठाई हुई वह शक्ति प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली उल्का के समान प्रकाशमान थी। राम ने जब उसे चलाया तब वह शक्ति राक्षस राज के सूल पर ही पड़ी। उसके प्रहार से टूक टूक और निस्तेज होकर वो महान सूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूल और शक्ति का जो है ना, ये है इंद्र की शक्ति ने, और राम के हाथ से छोटी है इस कारण से, नहीं तो वो शक्ति भी काम नहीं करती। साक्षिप्ता राक्षस इंद्रस्य तस्मिन् शूले पपातः भिन्न शक्त्या महान शूलो निपातः गहन द्युति गत द्युति। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सीधे जाने वाले वज्र के समान पहने बाणों के द्वारा रावण के घोड़ों को घायल कर दिया। फिर अत्यंत सावधान होकर उन्होंने तीन तीखे बाणों से रावण की छाती छेद डाली और पंखदार बाणों से उसके ललाट में चोट पहुंचाई। उन बाणों की मार से रावण के सारे अंग छत विक्षत हो गए, उसके सारे शरीर से खून की धारा बहने लगी। उस समय रावण सेना के समूह में खड़ा हुआ ऐसा मालूम पड़ता है जैसे फूलों से भरा हुआ अशोक वृक्ष का अशोक वृक्ष शोभा दे, मतलब पूरे शरीर में खून की धारा बह रही है। राम के बाणों से जब सारा शरीर अत्यंत घायल हो लहू लुहान हो गया, तब रावण को उस रणभूमि में बड़ा खेद हुआ। तब उसने बड़ा क्रोध प्रकट किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने हजारों बाणों की धारा बरसाकर रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। कितने बाण मारे, लेकिन भगवान राम विचलित नहीं हुए। जैसे महान पर्वत पर्वत के ऊपर वर्षा की धारा कितनी पड़े, पर्वत विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए पराक्रमी रघुवीर ने शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। इसके बाद रावण बहुत कुपित होकर के भगवान की छाती में हजारों बाण मारता है। तो भगवान श्री राम जो है ना रक्त से नहा उठे और कुपित होकर के अब सूर्य के समान तेजस्वी बाणों को राम ने हाथ में लिया। अब दोनों एक दूसरे पर जब बाण चलाते हैं तो ऐसा अंधकार छाया बाणों का कि राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, इतने बाण एक दूसरे पर चला रहे हैं। अब श्री राम जो है रावण से कठोर वाणी में बोले। तो रावण ने पहली बार राम से जो बोली बात वो आपने सुनी, अब राम जो है ना कठोर वाणी में अब रावण से बोलते हैं। तथा क्रोध है समाविष्टो रामो दशरथात्मज उवाच रावणम वीरहम प्रहस्य परसं वचः। अब राम क्या कहते हैं, नीच राक्षस तू मेरे अंजाम में जन स्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। अभी तुम पराक्रम जो अपना दिखा रहा है तो तेरा क्या पराक्रम, पराक्रमी तुम बिल्कुल है ही नहीं। मम भार्या जनस्थानात् अज्ञानान् राक्षसाधम हताते व्यवसायस्मान् तस्मात् त्वं नासि वीर्यवान्। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को सूरवीर समझता है। अच्छा इस बात का कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो अपने को सूर भी समझता है। माया विरहिताम दीनाम वर्तमानाम महाबने वैदेहीं प्रसमम मृत्वा सूरोहम इति मन्यसे। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर, पर स्त्री के अपहरण जैसे कर्म करके तू अपने को सूरवीर मानता है, स्त्री ससुर है विनाथासुन परतारा भी मर्शनम कृत्वा काक्रोशम कर्मम सूरोहम इति मन्यसे। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल्कि घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या बुलाई है? मौत। तू अपनी मौत ही पकड़ करके ले गया है। क्या अब भी तू अपने को सूरवीर समझता है? भिन्न मर्यादे निर्लज्ज चारित्रे सुनवस्थित दर्पान मृत्युम उपादाय सूरोहम इति मन्यसे। ये बातें जरूरी है ना बताना। राम जो है ना जो बोल रहे हैं, ये बोलना जरूरी था राम का। तुम बड़ा सूरवीर बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसीलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। सूरेण धनादे भ्रात्रा बले समुदितेन च श्लाघनीयम महत् कर्म यशस्यम च कृतम त्वया। अभिमान पूर्वक किए गए उन निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो फल है उसे तू आज अभी प्राप्त कर। उत्से के नाभी पत्रस्य गर्हितस्याहितस्य च कर्मणा प्राप्नी इदानीं तस्यादेशु महत्फलम्। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को सूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। सोरोहमिति चात्मानम अवगच्छसि दुर्मते नैवलज्जासि ते सीताम चौरवन व्यपकर्षतः। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे बाणों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। मेरे सामने कर दिया हुआ। यदि मत सन्निधौ सीता दर्शिता स्या त्वया बलान् भ्रातरं तु खरं पश्येत् तया मत सायके रहतः। मंद बुद्धे, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरे आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यम लोक पहुंचाता हूँ। दृष्ट्यासि मम मंदात्मं चक्षुर विषय मांगताम अद त्वाम साय के तीक्ष्ण निर्णयामी यमे साधनम। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटेंगे। अद्यते मच्छर छिन्नम सिरो ज्वलित कुंडलम रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी होगी, उसकी छाती पर बहुत से गीध टूट पड़ेंगे और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिएंगे। आज निपत्यो रसी ग्रंथास्ते क्षितोक्षिप्तस्य रावण पिबन्तु रुधिरं तरसान बाण शल्या तरोत्थितम्। आज मेरे बाणों से विदीर्ण और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचेंगे। आज जैसे गरुड़ जी सर्पों को खींचते हैं, ऐसे पक्षी तेरी आंतों को खींचेंगे। आज अद्य मद भाण भिन्न गतासोपतितस्यते कर्षन तुंत्राणि पतगम गरुत्मन्ते इवो रगम। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षसराज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय राम का बल पराक्रम उत्साह और अस्त्र बल बढ़कर दुगना हो गया। और रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के साथ महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। तो अब रावण का हृदय व्याकुल हो गया। बाणों ने बहुत से पत्थर भी चलाए और रामचंद्र जी की छोड़े हुए बाणों की वर्षा से अब रावण बहुत घायल हो गया, हृदय व्याकुल हो गया। अब उसमें शस्त्र उठाने की, धनुष खींचने की और पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई। उसका मृत्युकाल समीप आ गया। उसकी ऐसी अवस्था देख करके उसका सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा करके ले गया। तो रास्ते में ही रावण को जब होश आया तो फिर सारथी को बहुत डांटने लगा। क्यों? क्योंकि उसको मरना था, रावण को मरना था। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्यों यहां ले आया, तुम क्यों भगा के ले आया। तो कैसे बोलता है, दुर्बुद्धे, क्या तूने मुझे पराक्रम शून्य समझा है, असमर्थ समझा है, मुझे डरपोक समझा है, निस्तेज समझा है, जो मेरी अवहेलना करके तो अपनी बुद्धि से मनमाना काम कर रहा है। देखा, सारथी तो सहायता कर रहा था बेचारा, लेकिन उसको मरना था इसलिए सारथी को उल्टा बोल रहा है। तो फिर सारथी ने कहा, महाराज मैं डरा नहीं हूं, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है, मैं असावधान भी नहीं हूं, आपके प्रति मेरा स्नेह भी कम नहीं हुआ है, और आपने जो मेरा सत्कार किया है उसे भी मैं नहीं भूला हूं। मैं सदा आपका हित चाहता हूं, आपकी यश की रक्षा के लिए यत्नशील रहता हूं। मेरा हृदय आपके प्रति स्नेह से आर्द्र है, इस कार्य से आपका हित होगा ये सोचकर ही मैंने ऐसा किया है, भले ही आपको अप्रिय लगा हो। फिर रावण की आज्ञा से सारथी ने तुरंत ही अपने घोड़े हाके और राक्षस रात का विशाल रथ क्षण भर में श्री रामचंद्र जी के समीप आ गया। अब भगवान राम जो है रावण के उस रथ को देखते हैं कि वो आया है। रावण का रथ कैसा है, काले रंग के घोड़े जुते हुए हैं रावण के रथ में, और बड़ी भयंकर कांति है उस रथ की। और रावण का जो धनुष था उसके द्वारा वो रथ इंद्र धनुष की छटा छिटकाता था। उसकी आवाज कैसी थी, रथ की आवाज वज्र की आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा है रावण के रथ का। तो रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी और अपने सारथी मातली से कहा, राम ने, राम क्या कहते हैं, मातली देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार महान वेग के साथ पुनः आ रहा है इससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। जब ये मरने अब बिल्कुल निश्चय कर लिया कि मरना ही है मुझे, इसलिए आ रहा है, अतः आप तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। भय और घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हांकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एकाग्रचित होकर युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूं, तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा हूं। भगवान राम कह रहे हैं कितना शिष्टाचार है, सारथियों को कह रहे हैं मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि तुम तो पहले से जानते हो, मैं तुम्हें केवल स्मरण करा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता है। रामचंद्र जी के इस वचन से मातली को बड़ा संतोष हुआ। अब देखो रावण अपने सारथी से कितनी गलत तरीके से बात कर रहा है और राम अपने सारथी से कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और मातली ने रावण के विशाल रथ के दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया और उसके पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इससे रावण को बड़ा क्रोध हुआ, वो अपनी लाल लाल आंखें फाड़ कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वर्षा करने लगा। अब वो अपशकुन हो रहे हैं। कैसे अपशकुन हो रहे हैं? मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। देखा, रावण के रथ के ऊपर मेघ खून की वर्षा कर रहे हैं, रथ के ऊपर ही वर्षा कर रहे हैं। बड़े देश से उठे हुए बमंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा करने लगे। बमंडर जो है ना, वामावर्त परिक्रमा कर रहा है उसकी, तो ये भी अपशकुन है, बुरा है। दक्षिणावर्त नहीं, वामावर्त, जैसे प्रदक्षिणा करते हैं ना आप, तो जैसे करते हैं तो उल्टी प्रदक्षिणा, तो जो बवंडर है उसके रथ की उल्टी प्रदक्षिणा कर रहा है। और जिस जिस मार्ग से रावण का रथ जाता था उसी ओर आकाश में मंडराता हुआ गीधों का महान समुदाय दौड़ा जाता था। रावण का रथ जहाँ जा रहा है जिस रास्ते में, बहुत गीध जहाँ दौड़े जा रहे हैं, है ना, भोजन के लिए। महंगृध्रय कुलम चाशय भ्रमाणम नमस्थले ये न रथो याति तेने तेने प्रधावती। और क्या है कि अड़हल के फूल की सी लाल रंग वाली संध्या से आवृत हुई लंकापुरी की भूमि दिन में भी जलती हुई जैसी दिखाई दे रही है। ये भी अपशकुन है उसका। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी जो उसके अहित की सूचना दे रही थी। उससे राक्षस लोग बहुत भयभीत हो गए। और रावण जहां जहां जाता वहां वहां की भूमि डोलने लगती थी, हिलती थी। मतलब भूकंप आ रहा है। प्रहार करते हुए राक्षसों की भुजाएं निकम्मी हो गई, मानो किसी ने पकड़ लिया हो। तो ये भी मृत्यु का लक्षण है। रावण के आगे पड़ी हुई सूर्य की किरणें पर्वतीय धातुओं के समान लाल, पीले, सफेद और काले रंग की दिखाई देती थीं। ये अपशकुन है। और रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख्य ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गिदड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलती थीं और उनके पीछे झुंड के झुंड गीत मंडराते चलते थे। रणभूमि में धूल उड़ाती वायु रावण की आंखें बंद करती हुई प्रतिकूल दिशा की ओर बह रही थी। रावण जहां जाता है धूल उसकी आंखों में पड़ रही है, रावण की आंखों में। और उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिर रही हैं। तो बिना बादल की बिजली गिरे, और राक्षसों की सेना में बिजली गिर रही, बिना बादल की बिजली गिर रही है। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से अच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थीं। ये सब अपशकुन है। और रावण के घोड़े, उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे हैं, रावण के घोड़े। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते हैं। घोड़ों की जंघाओं से आग निकल रही है और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रावण के। इस तरह बहुत से दारुण और भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। जेतव्यमिति काकुत्सो मर्तव्यमिति रावणः ततो सुवीर्य सर्वस्वं युद्धे दर्शयताम तदा। उस समय पराक्रमी रावण ने क्रोध पूर्वक बाणों का संधान करके रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक ना पहुंच सके, केवल रथ की शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े, ध्वजा नहीं गिरा पाए। तब महाबली रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने के लिए उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। तथा रामोपि संक्रोधन चाप मा कृष्य वीर्यमान कृते प्रतिकृतम कर्तुम मनसा संप्रचक्रमे। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य है और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। रावण ध्वज मुंदिस्य मुमोच निजतम सरम महासर्पम निवासह्यम ज्वलंतम स्वेन तेजसा। अब क्या हुआ, श्री राम ने उस ध्वज को निशाना साध कर अपना बाण चलाया और रावण के ध्वज को काट करके वो बाण पृथ्वी में समा गया। रावण के अस्त का वह ध्वज कटकर धरती में गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देखकर महाबली रावण क्रोध से जल उठा और अमर्ष के कारण वह बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने बाणों से रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इंद्र के जो घोड़े दिव्य थे, इसलिए ना तो लड़खड़ाए और ना अपने स्थान से विचलित हुए। वे पहले के समान स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। रावण के जो बाण है, कमल की नाल से प्रहार करो तो क्या कुछ नहीं होगा। उन घोड़ों को घबराहट में ना पड़ता देखकर रावण का क्रोध और भी बढ़ गया कि मैं तो घोड़ों को बाण मार रहा हूँ, घोड़े घबरा नहीं रहे हैं, खड़े हैं जो कि तुम। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। अब गदा चलाई, चक्र चलाया, परेख मूसल पर्वत यानी पर्वत शिखर, वृक्ष सूल फरसे और माया के बने हुए बहुत से शस्त्रों की वर्षा की। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने बाणों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। कितना बाण मारा। तब रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों और हजारों की संख्या में छोड़ा। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। इतने बाण मारे। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहां का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश जैसा प्रतीत होता था। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया मानो उसमें सांस लेने की जगह भी नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। उन दोनों के श्रेष्ठ रथ समर भूमि में अत्यंत क्रोध पूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषय प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों गति वेग का आश्रय लेते थे। अब भगवान राम कुपित होकर के अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान करते हैं और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का सुंदर मस्तक कट करके गिरा। उसका कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिरा जैसे तीनों लोकों के प्राणियों ने देखा। बहुत लोग देख रहे थे, है ना, रावण का सिर कट करके गिरा। तथा क्रोधान महाबाहु रघुणाम कीर्ति वर्धन संधाय धनुषा रामहम सर्मासी विशोपमम रावणस्य शिरोच्छिन्दन श्रीमञ्जुलितं कुण्डलम तच्छिरापतितं भूमौ दृष्टं लोकैः त्रिभिस्तदम्। लेकिन हुआ क्या, सर तो जमीन में गिर पड़ा लेकिन उसकी जगह पर रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। देखा आश्चर्य। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले श्री राम ने रावण को वो दूसरा सिर भी जल्दी से काट दिया, तुरंत काट दिया। उसके करते पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु राम ने वज्र के समान बाणों से फिर उसे काट दिया। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके 100 सिर काट डाले राम ने। फिर भी उसके जीवन का नाश होने के लिए उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था, अंत ही नहीं आ रहा उसके सिरों का। तब कौशल्य का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे भगवान राम। अहो, मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराट का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, बाली के प्राण लिए और समुद्र को भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वही मेरे सब बाण आज रावण के ऊपर कुंठित हो गए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। वैसे कुंठित तो नहीं हुए, सिर तो कट रहे हैं, लेकिन सिर नए सिर आ रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का असफलता है। इस प्रकार चिंता में पड़े होने पर भी रघुनाथ जी ने युद्धस्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। अब छाती पर मारना शुरू किया। तब रथ पर बैठे हुए राक्षसराज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि से राम को गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। अब बहुत भयानक युद्ध हुआ, और ना तो रात में बंद होता है ना दिन में बंद होता है, दो घड़े के लिए एक क्षण के लिए भी युद्ध बंद नहीं हो रहा है, दिन रात लगातार चल रहा है। अब ये युद्ध जो है ना समाप्त नहीं हो रहा है, तो देवराज के सारथी मातली ने श्री राम से अब जल्दी कहा, क्या कहा, वीरवर आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए, देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वो अब आ गया है, ब्रह्मास्त्र चलाइए। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया, फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। ये वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था, वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था, ब्रह्मास्त्र। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोगों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग में वायु की प्रतिष्ठा थी, धार में अग्नि की प्रतिष्ठा थी और शरीर में सूर्य की प्रतिष्ठा थी, शरीर में आकाश की, अच्छा धार में अग्नि और सूर्य की, शरीर में आकाश की और भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा थी। मेरु पर्वत मंदराचल पर्वत जैसा भारी वो बाण था। बड़े बड़े दरवाजों और पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने वाला था वो बाण। उसका सारा शरीर रक्त से नहाया था उस बाण, वो बाण जो है देखने में बड़ा भयंकर था, वज्र के समान कठोर था, सबको त्रास देने वाला था, युद्ध में यमराज का भयानक रूप धारण कर लेता था। वो जो बाण था गरुड़ के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। उस बाण का बड़ा वर्णन है। और राम ने उस बाण को धनुष पर रखा, जब धनुष पर रखा तो संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी जब राम ने वो बाण रखा। श्री राम ने अत्यंत कुपित होकर बड़े यत्न किए था धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया। रावणाय संक्रोधो भृष्मायम मैं कार्मुकम चिक्षेपे परमाय तहासरम मर्मे विदारणम। अब क्या हुआ, वो बाण वज्र के समान दुर्धर्ष रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली बाण ने छूटते ही रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। सिरों का तो अंत ही नहीं हो रहा था, सिर काटते रहते तो हृदय में ब्रह्मास्त्र मारा उसके। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेग पूर्वक धरती में समा गया। रुधिराग्ता सवेगेन शरीरां तय कर सन रावण से हरण प्राणान विवेश धरणी तलम। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति रामचंद्र जी के तरकस में लौट आया। कैसा आश्चर्य है, खून से रंगा हुआ बाण राम के तरकस में विनीत सेवक की भांति आ गया। तसरो रावणम हत्वा रुधिरार्द्रे कृतच्छवि कृतकर्मा निभृत वर्म सतोणीम पुनराविशन। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से धनुष बाण भी छूटकर गिर पड़ा। वो भयानक वेगशाली राक्षस प्राणहीन होकर वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। तम दृष्ट्वा पतितम भूमौ हत से निशाचर हतना था भय त्रस्ताम सर्वता संप्रतुद्रुभु। रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले बानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। अब बानरों ने मारना शुरू किया राक्षसों को, रावण की मृत्यु हो गई। तो उन हर्षोल्लासित बानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणायुक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय बानर विजय लक्ष्मी में से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। तब श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे सब बानर लोग जो है। तथोविने दो संग्रिष्टा वानराज काशिनः वदन्तो राघव जयम रावणस्य चतुर्वधम। इस समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजी, वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अथांतरिक्षे विनदन सौम्य त्रिदशम दुंदुभि दिव्य गंध वह तत्र मारुता सुसुखो भवम। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश में देवताओं के मुख से निकली हुई रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। देवता लोग क्या कहते हैं, साधु साधु इस प्रकार से बोलते हैं। संपूर्ण लोगों को भय देने वाले राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। आविवेश महान हर्षो देवानाम चारणे सह रावणे निहते रौद्रेम सर्वलोके भयंकरे। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव अंगद और विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी, सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। तथा प्रजंगमो प्रशमम मरुणगणाम दिशा प्रसे दुर्विमलम नभो भवन बही चकंपे न च मारुतो भवाम स्थिर प्रभा चाप्य भवन दिवा करहाम। सुग्रीव विभीषण अंगद और लक्ष्मण अपने सरहदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नैनाभिराम से राम की विधिवत पूजा की। तथा सुसुंग्रीव विभीषणांगदाम सुहृन विशिष्टा सह लक्ष्मण सदाम समेत हृष्टा विजयेन राघवम रणेभिरामम विधिना विपूजयन। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात सजनों सहित सेना से घिरे हुए महा तेजस्वी रकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। सतनेहत रिपो स्थिर प्रतिज्ञा सतन बला विवृतो रणे बभोव रकुल नंदनो महोजा तिदस गण रवि समृतो महेन्द्र। रावण की स्त्रियों का विलाप सुनिए। रावण की स्त्रियां रावण के मारे जाने का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल हुई राक्षसियां अंतःपुर से निकल पड़ी। लोगों के बारंबार मना करने पर भी वे धरती की धूल में लौटने लगती थीं। रावण की स्त्रियां उनके केस खुले हुए थे और जिनके बछड़े मर गए हों उन गऊओं के समान वे शोक से आतुर हो रही थीं। राक्षसों के साथ लंका के उत्तर दरवाजे से निकली और भयंकर युद्ध भूमि में प्रवेश करके अपने मरे हुए पति को खोजने लगी स्त्रियां और क्या बोलती हैं, हा आर्य पुत्र, हा नाथ, इस प्रकार की पुकार मचाती हुई वे सब के सब उस रणभूमि में जहां बिना मस्तक के लाशें बिछी हुई थीं और रक्त के कीच जम गई थी सब और गिरती पड़ती भटकने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे पति के शोक से बेसुध हो युद्ध पति के मारे जाने पर हथिनियों की तरह करुण क्रंदन कर रही थी। रणभूमि की धूल में पड़े हुए अपने मृत पति पर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई वन की लताओं के समान उसके अंगों पर गिर पड़े। उनमें से कोई तो बड़े आदर के साथ उसका आलिंगन करके, कोई पैर पकड़कर और कोई गले से लगकर रोने लगी। कोई स्त्री अपनी दोनों भुजाएं और ऊपर उठाकर पछाड़ खाकर गिरी और धरती पर लौटने लगी और कोई मरे हुए स्वामी का मुख देखकर मूर्छित हो गई। कोई पति का मस्तक गोद में लेकर उसका मुख निहारती और अश्रु बिंदुओं से पति के मुख को नहलाती हुई रोदन करने लगी। इस प्रकार अपने पति रावण को धरती पर मरकर गिरा देख वे सब के सब आर्त भाव से उसे पुकारने लगी और शोक के कारण नाना प्रकार से विलाप करने लगी। अब क्या बोली, हाय जिन्होंने यमराज और इंद्र को भी भयभीत करके रखा था, राजाधिराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था, गंधर्वों ऋषियों और महामनस्वी देवताओं को भी रणभूमि में भय प्रदान किया था, वे ही हमारे प्राणनाथ आज मारे जाकर सदा के लिए सो गए हैं। हाय जो असुरों देवताओं और नागों से भी भयभीत होना नहीं जानते थे, उन्हें को आज मनुष्य से ये भय प्राप्त हुआ है। ये है ना बड़ा विरोधाभास, मनुष्य के द्वारा भय प्राप्त हुआ है। तो भगवान तो पूर्ण मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, है ना, जैसे कि माता ने उनको याद दिला रहा है नहीं तो उनको याद नहीं आ रहा है राम को, है ना। तो पूर्ण मनुष्य जैसी भगवान लीला कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के हाथ से जिन्हें देवता दानव और राक्षस भी नहीं मार सकते थे वही आज एक पैदल मनुष्य के हाथ से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। कितना आश्चर्य। अवध्यो देवतानां यस् तथा दानव रक्षसाम् हताशोऽयं रणे शेते मानुषेण पदातिनां। हाँ भगवान राम तो पैदल ही चलने वाले थे, है ना, 14 साल तक तो वो पैदल ही चलेंगे। जो देवताओं असुरों और यक्षों के लिए भी अवध थे वे ही किसी निर्बल प्राणी के समान एक मनुष्य के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। यो न सक्यां सुरैर्हन्तुं न यक्षैर्न सुरैस्तथाहं सोऽयं कश्चिन् यवा तत्त्वं मृत्युं मर्त्येन लम्बितः। इस तरह की बातें कहती हुई रावण की वे दुखिनी स्त्रियां वहां फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आतुर होकर पुनः बारंबार विलाप करने लगी। एवं वदन्त्यो रुरुदुस्तस्यता दुखितां स्त्रियां भूय इव जो दुखार्ता विले पुष्टा पुनः पुनः। हाँ वे बोली, प्राणनाथ आप में सदा हित की बात बताने वाले सुहृदों की बातें अनसुनी कर दी और अपनी मृत्यु के लिए सीता का अपहरण किया। इसका फल ये हुआ कि राक्षस मार गिराए गए और आपने इस समय अपने को रणभूमि में और हम लोगों को महान दुख के समुद्र में गिरा दिया। तुमने अपने को रणभूमि में गिराया और हमको दुख के समुद्र में गिराया। आपके प्रिय भाई विभीषण आपको हित की बात बता रहे थे तो भी आपने अपने वध के लिए उन्हें कटु वचन सुनाए, उसी का ये फल मिला है। प्रवाणोपि हितम वाक्यम इष्टो भ्राता विभीषण दृष्टम परुषितो मोहा त्वयात्म वध कांक्षिणाम।
तो इस प्रकार से हमने उस घटना का श्रवण किया जिसमें श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और ये घटना आज के ही दिन घटित हुई थी। अब कोई प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि ये कहा जाता है कि भगवान राम का बाण अमोघ होता है, परंतु यहाँ हमने सुना है कि रावण के ऊपर राम के बहुत से बाण व्यर्थ हो गए, तो कैसे हुआ? हाँ, ये बात सत्य है कि राम के बाण अमोघ होते हैं, परंतु जब राम का रावण के साथ युद्ध होता है तो ये युद्ध बराबरी का है। जब भगवान को युद्ध करने की इच्छा होती है तो वे मक्खी मच्छरों से युद्ध थोड़े ही करेंगे। युद्ध का आनंद तो तभी आता है जब कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, नहीं तो युद्ध का आनंद कहाँ होता। यदि भगवान राम रावण को एक ही बाण से मार देते, तीनों लोगों के दर्शक इस महान युद्ध को देख रहे थे। फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि हीरो पहले खलनायक से हारता है परंतु बाद में तो उसे जीतना ही है। धन्यवाद। श्री रामचंद्र विजय महामहोत्सव के।